नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट 50 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, पीटर ब्रूस और एंड्रू ब्रूस की डेटा साइंस के लिए लिखी गई व्यावहारिक सांख्यिकी मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य पारंपरिक सांख्यिकी के सूत्रों को दोहराना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि वास्तविक डेटा के साथ काम करते समय कौन सी सांख्यिकी अवधारणाएं उपयोगी है, उनका सही प्रयोग कैसे किया जाए और किन प्रचलित तरीकों के निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। पुस्तक का ढांचा डेटा की प्रारंभिक जांच से शुरू होकर सैंपलिंग, प्रयोग, महत्व परीक्षण, प्रतिगमन, वर्गीकरण, मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तक बढ़ता है। इसका मूल दृष्टिकोण निर्णय केंद्रित है। किसी तकनीक को केवल चलाना पर्याप्त नहीं है। डेटा कैसे जुटाया गया, अनिश्चितता कितनी है, मॉडल किस प्रश्न का उत्तर दे रहा है और परिणाम की व्याख्या किन सीमाओं में होनी चाहिए, ये प्रश्न बराबर महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें प्रोग्रामिंग और बुनियादी सांख्यिकी का कुछ परिचय है, पर डेटा साइंस के संदर्भ में सांख्यिकीय विवेक विकसित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से मॉडलिंग से पहले डेटा को समझना। पुस्तक का एक केंद्रीय आग्रह यह है कि डेटा साइंस की शुरुआत मॉडल चुनने से नहीं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से होती है। किसी डेटा सेट के औसत प्रसार, वितरण, अनुपस्थित मान, असामान्य प्रेक्षण और चर के आपसी संबंधों को देखे बिना बनाया गया मॉडल अक्सर सतही पैटर्न को वास्तविक संकेत मान लेता है। उदाहरण के लिए, औसत किसी समूह की सामान्य स्थिति का उपयोगी सार हो सकता है, लेकिन अत्यधिक झुके हुए वितरण या बहुत बड़े अपवादों की उपस्थिति में मीडियन अधिक प्रतिनिधिक हो सकता है। इसी तरह प्रतिशत तक और बॉक्स प्लॉट केवल चित्रात्मक उपकरण नहीं है, वे वितरण की पूंछों और संभावित डेटा गुणवत्ता समस्याओं की पहचान में मदद करते हैं। पुस्तक डेटा विजुअलाइजेशन को भी निष्कर्ष का सजावटी प्रदर्शन नहीं, बल्कि जांच की विधि मानती है। ग्राफ के माध्यम से समूहों के अंतर, गैर लिखी संबंध, मौसमी पैटर्न और असंगत रिकॉर्ड जल्दी दिखाई दे सकते हैं। इस दृष्टिकोण का व्यावहारिक अर्थ है कि विश्लेषक को किसी एल्गोरिदम की भविष्यवाणी क्षमता पर जाने से पहले मापन की इकाई, डेटा उत्पत्ति और चर की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना चाहिए। इस प्रकार प्रारंभिक अन्वेषण बाद के सांख्यिकी परीक्षणों और मॉडलों के लिए अधिक यथार्थवादी आधार तैयार करता है। दूसरा, रैंडम सैंपलिंग और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पक्षपात को नियंत्रित करना। बड़े डेटा के युग में भी पुस्तक रैंडम सैंपलिंग को अनिवार्य सांख्यिकीय सिद्धांत के रूप में रखती है। बहुत अधिक रिकॉर्ड होना अपने आप में प्रतिनिधिक डेटा की गारंटी नहीं देता। यदि डेटा किसी विशेष ग्राहक समूह, समयावधि, स्थान या व्यवहार के आधार पर व्यवस्थित रूप से चुना गया है, तो विशाल डेटासेट भी पक्षपाती निष्कर्ष दे सकता है। रैंडम सैंपलिंग चयन की संभावना को अधिक संतुलित बनाती है और नमूने से पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने की आधारशिला देती है। पुस्तक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की अवधारणा के जरिए समझाती है कि एक ही आबादी से अलग अलग नमूने लेने पर अनुमान बदलेंगे, इसलिए किसी औसत, अनुपात या मॉडल माप को स्थिर सत्य की तरह नहीं देखना चाहिए। मानक त्रुटि और बूटस्ट्रैप जैसी विधियां इस अनिश्चितता को मापने के व्यावहारिक साधन है। बूटस्ट्रैप विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इसमें उपलब्ध नमूने से पुनः नमूनाकरण कर किसी अनुमान की परिवर्तनशीलता का आकलन किया जाता है। यह अध्याय डेटा साइंस के एक आम भ्रम को चुनौती देता है कि आकार ही गुणवत्ता है। पुस्तक के अनुसार चयन प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व और अनिश्चितता की समझ केवल रिकॉर्डों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरा, प्रयोग डिजाइन। कंट्रोल समूह और महत्व परीक्षण की सीमित लेकिन उपयोगी भूमिका। पुस्तक सांख्यिकीय प्रयोगों को कारण और प्रभाव के प्रश्नों के लिए सबसे विश्वसनीय ढांचों में रखती है। जब किसी वेबसाइट परिवर्तन, विपणन प्रस्ताव या उत्पाद सुविधा के असर का आकलन करना हो, तो केवल परिवर्तन के पहले और बाद के आंकड़ों की तुलना पर्याप्त नहीं होती। समय, उपयोगकर्ता संरचना और बाहरी घटनाएं भी परिणाम बदल सकती है। माइमन फार्मर्स, एचएमए और कंट्रोल समूह इन वैकल्पिक प्रभावों को दोनों समूहों में अपेक्षाकृत संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण ए और बी परीक्षण डेटा साइंस में व्यापक रूप से उपयोग होता है। पुस्तक महत्व परीक्षण, पी वैल्यू और टाइप 1 तथा टाइप 2 त्रुटियों को इस व्यावहारिक संदर्भ में रखती है। पी वैल्यू को किसी परिकल्पना के सही होने की संभावना समझना गलत है। वह इस बात का माप है कि यदि शून्य परिकल्पना मान ली जाए तो देखे गए या उससे अधिक चरम परिणाम कितने संगत है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि सांख्यिकी महत्व और व्यावसायिक महत्व अलग बातें हैं। बहुत बड़े नमूने में छोटा अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन निर्णय के लिए नगण्य हो सकता है। इसलिए प्रभाव का आकार, प्रयोग की रूपरेखा, बहु परीक्षण और निर्णय का वास्तविक संदर्भ निष्कर्ष के आवश्यक हिस्से हैं। चौथा, प्रतिगमन द्वारा अनुमान। पूर्वानुमान और असामान्य प्रेक्षणों की पहचान, प्रतिगमन पर पुस्तक की चर्चा इसे केवल रेखा फिट करने की तकनीक नहीं बल्कि संबंधों को मापने और अनुमान बनाने की पद्धति के रूप में प्रस्तुत करती है। लैखिक प्रतिगमन में लक्ष्य चर और पूर्वानुमान चर के संबंध को गुणांकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, लेकिन उपयोगी प्रतिगमन के लिए केवल कम त्रुटि पर्याप्त नहीं है। विश्लेषक को यह देखना होता है कि संबंध लैखिक मानना उचित है या नहीं, क्या चर अत्यधिक परस्पर संबद्ध हैं, क्या अवशेषों में कोई संरचना बची है और क्या कुछ प्रभावशाली प्रेक्षण मॉडल को अनुचित ढंग से खींच रहे हैं। पुस्तक नियमितीकरण की उपयोगिता भी बताती है, जहां जटिल मॉडल के गुणांकों पर नियंत्रण रखकर ओवरफिटिंग कम की जाती है। डेटा साइंस में प्रतिगमन का उपयोग मूल्य, मांग या जोखिम जैसे संख्यात्मक परिणामों के अनुमान में होता है, पर इसके अवशेष असामान्य मामलों को पहचानने में भी सहायक होते हैं। यदि वास्तविक मान मॉडल के अनुमान से बहुत दूर है तो वह धोखाधड़ी, मापन त्रुटि या किसी महत्वपूर्ण लेकिन अब तक अनदेखे कारक का संकेत हो सकता है। इस तरह प्रतिगमन भविष्यवाणी और जांच दोनों भूमिकाएं निभाता है। पुस्तक इस बात पर बल देती है कि गुणांक को कारणात्मक प्रभाव कहने से पहले प्रयोगात्मक या अन्य ठोस कारणात्मक आधार आवश्यक है। अंत में वर्गीकरण, मशीन लर्निंग और अनलेबल डेटा से संरचना निकालना पुस्तक भविष्यवाणी के दो अलग प्रकारों के बीच स्पष्ट भेद बनाती है। प्रतिगमन संख्यात्मक परिणाम का अनुमान देता है, जबकि वर्गीकरण किसी रिकॉर्ड को श्रेणी में रखता है, जैसे ग्राहक के छोड़कर जाने की संभावना या किसी लेन देन के संदिग्ध होने का निर्णय। वर्गीकरण में केवल सटीकता देखना भ्रामक हो सकता है, खासकर तब जब एक श्रेणी बहुत दुर्लभ हो। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता, विशिष्टता, प्रिसीजन, रिकॉल और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस बात को समझने में मदद करते हैं कि मॉडल किस प्रकार की गलती कर रहा है। पुस्तक ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के पृथक्करण तथा ओवरफिटिंग के जोखिम पर भी ध्यान देती है। मॉडल को पुराने डेटा का विवरण याद करने के बजाय नए डेटा पर काम करना चाहिए। सांख्यिकीय मशीन लर्निंग की चर्चा में वृक्ष आधारित विधियां और एंसेम्बल दृष्टिकोण जैसे मॉडल शामिल हैं, जिनका लक्ष्य उपयोगी पूर्वानुमान है। इसके विपरीत अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में पूर्व निर्धारित लेबल नहीं होते। क्लस्टरिंग और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जैसी विधियां डेटा की अंतर्निहित संरचना, समूहों या आयामों को खोजती है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि ऐसे समूह अंतिम सत्य नहीं होते, उनकी स्थिरता, व्याख्याता और निर्णय में उपयोगिता को अलग से जांचना पड़ता है। निष्कर्ष में प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट उन डेटा विश्लेषकों, आरंभिक डेटा साइंटिस्टों, सॉफ्टवेयर पेशेवरों और विषय विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त है जो आर या सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग के बुनियादी उपयोग से परिचित हैं और अपने विश्लेषण के पीछे की सांख्यिकीय सोच मजबूत करना चाहते हैं। यह पूर्णतः शुरुआती पाठक के लिए गणित और प्रायिकता का विस्तृत प्रथम पाठ नहीं है, ना ही यह किसी एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी का तकनीकी मैनुअल है। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह सीमित संख्या में चुनी हुई अवधारणाओं को डेटा साइंस के वास्तविक कार्यप्रवाह से जोड़ती है। पाठक सीखता है कि डेटा का सार कैसे बनाया जाए, नमूना पक्षपात क्यों महत्वपूर्ण है, प्रयोग के निष्कर्षों को कैसे परखा जाए और भविष्यवाणी मॉडल को किस कसौटी पर जांचा जाए। पुस्तक की अलग पहचान इसका संतुलन है। यह पारंपरिक सांख्यिकी की अवधारणाओं को पूरी तरह त्याग कर केवल एल्गोरिदम केंद्रित नहीं बनती और न ही सिद्धांत को इतना औपचारिक बनाती है कि व्यावहारिक निर्णय पीछे छूट जाएं। यह विशेष रूप से गलत प्रयोगों जैसे केवल पी वैल्यू पर निर्भरता, असंतुलित वर्गों में भ्रामक सटीकता या बड़े लेकिन गैर प्रतिनिधिक डेटा पर अतिविश्वास के प्रति सावधान करती है। इसलिए इसे किसी गहरे सांख्यिकी पाठ्यक्रम के विकल्प के बजाय एक सघन उपयोग केंद्रित संदर्भ और बेहतर विश्लेषणात्मक निर्णयों की आधार पुस्तक के रूप में पढ़ना सबसे उचित है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पीटर ब्रूस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।